نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد يا رب العالمين. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جن کو ہم انصار آپ کہتے ہیں، اس وقت تو انصار نہیں کہیں گے ظاہر ہے، لیکن جو یثرب کے لوگ تھے، ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے ساتھ کتنی ملاقاتیں ہوئی؟
دو
ہوئی ہیں. کتنی دفعہ اوتھ لیا انہوں نے؟ ایک دفعہ اوتھ لیا. یہی بات یاد رکھنی آپ نے، جو پہلی دفعہ تھا وہ تو صرف ان کو تبلیغ کی تھی، دوسری دفعہ جب تھا تو پھر وہ بیت عقبہ اولا تھی، یعنی فرسٹ بیت تھی، اور اب آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے دوسری بیت عقبہ. عقبہ کیا ہوتا ہے؟ گھاٹی. گھاٹی جو دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی ویلی. نہیں ویلی ڈفرینٹ ہے، ویلی وادی ہوتی ہے. یہ دو پہاڑوں کے درمیان نہیں، جہاں سے لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے تھوڑی کراس کرتے ہیں، بیچ میں راستے بنے ہوتے ہیں نا کراس کرنے کے، وہ ہے گھاٹی. وہ وہاں پہ ان کی یہ بیعت ہوئی تھی نا، وہاں پہ وہ یہ بیٹھے ہوئے تھے جی. ٹھیک ہے، تو پہلی دفعہ میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے تقریباً؟ جو لوگ آئے تھے وہ پانچ چھ لوگ بالکل، اور وہ مسلمان ہوئے تھے. اور اس کے بعد اگلے سال 12 نبوت میں جب موسم حج تھا، تو حج کے موقع پر پھر 12 لوگ آئے تھے. پھر اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو ساتھ لے کر گئے، ساتھ لے کر گئے کچھ لوگوں کو کہ ہمیں ٹیچر چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، اب وہ ٹیچر کون تھے جو جنہوں نے سب سے زیادہ وہاں پہ کام کیا اور مسلمان لوگ ہوئے؟ مصعب بن عمیر. اب مصعب بن عمیر نے وہاں پہ جب کام کیا، تو ان کے کام کرنے کے بعد اب کیا ہوا، کیا ریزلٹ ہوا، نیکسٹ ایئر حج جب آیا تو پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور کیا ریزلٹ ہیں. نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری بیت عقبہ، پیج نمبر 153 ہے میری بک میں. موسم حج سن 13 نبوت میں یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے. اب دیکھیں وہ سارا، اس کا مطلب یثرب سارا کا سارا مسلمان نہیں ہوا تھا، ابھی وہاں پہ مشرکین تھے، مگر ہر گھر میں اسلام پہنچ چکا تھا، ہر ایک کو پیغام پہنچ چکا تھا. یہ نہیں تھا کہ پورا یثرب مسلمان ہوا. مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف و ہراس کے عالم میں نہیں چھوڑیں گے. اب ان سے یہ برداشت نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کا خوف رکھ کے اور یہاں پہ رہ رہے ہیں اور اتنے ڈینجر میں رہ رہے ہیں، تو اب ہم ایسا نہیں ہم برداشت کر سکتے. اب یہ دیکھیں حج پہ کون کون آیا یثرب سے؟ مسلمان بھی اور مشرق بھی، یاد رکھا. اور مسلمانوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا ان مشرقین سے، ان کو نہیں پتا. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ رابطہ کیا، اور ایام تشریف کے درمیانے روز. ایام تشریف کون سے ہوتے ہیں؟ 9, 11, 12 اور 13. ٹھیک ہے، یعنی بالکل جب حج ختم ہونے لگتا ہے، منا میں جاتے ہیں نا ہم، تو وہ رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کیا. پھر مقررہ دن پر یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے. انہوں نے جسٹ پریٹینڈ کیا ایوری تھنگ ایز نارمل چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا، تو چپکے چپکے ایک ایک دو دو آدمی نکل نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے. اب سمجھ آئی نا کہاں پہ جمع ہوئے، کون سی وہ جگہ؟ ہاں، وہ چپ کر کے اپنے ٹینٹس میں سے، اپنے خیموں میں سے گئے اور وہاں پہ جمع ہونے شروع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی یہ کمیونیکیشن ہو چکی تھی کہ ہم اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملیں گے، اور یہ انہوں نے اپنے اندر ہی خود ڈیسائیڈ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ان کو کہا تھا، خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب ہم یہ نہیں ان کو اس طرح سے چھوڑ سکتے، بالکل یہاں پہ اتنے ڈینجرس حالات میں یہ رہ رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم ان کو اپنے پاس لے آئیں. اب یہ کل 73 آدمی تھے، 73، 62 حضرت کے اور 11 اوس کے. 62 کتنے ہوتے ہیں؟ 62، اور 11 اوس کے تھے. इनके साथ दो औरतें भी थी और औरतों के नाम क्या है, नुसैबा बिनते काब बनु नजार से और अस्मा बिनते अमर बनु सलेमा से। और ये नुसैबा कौन है, किसी को पता है इनकी कुनियत? उम्मे अमारा का पता है किसी को? उहद में ये जंग में शरीक हुई थी और इनकी उनको इन्होंने जख्म खाए थे, लड़ी थी और बाद में भी थी बहुत अरसे तक, ये कई जंगों में हिस्सा लेती रही, हत्ता के रोमन के साथ लड़ने में भी, जंगे यरमूक में भी ये थी, बैते रिजवान में भी ये थी, मतलब पीछे नहीं ये कभी हटी म्यांमारा। और आसमान बिनते अमर के बारे में ज्यादा बहुत ज्यादा किताबों में नहीं है कुछ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपके साथ आपके चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे। कैसे? अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब क्या मुसलमान थे?
अब्बास हमजा हो गए थे, अब्बास अफ्रीका के फतह मक्का के बाद में
नहीं, पहले हो गए थे, लेकिन जंगे बदर में आपको पता है कैद होके आए थे और इनकी कराहतों की आवाजें जब आ रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इनकी जो जिनसे इनको बांधा हुआ शैकल, जो इनकी जंजीरें हैं वो जरा लूज कर दो, इतनी वो करा रहे थे। तो हजरत अब्बास कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ गए? वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, वो अभी तक अपनी कौम के दीन पर थे लेकिन चाहते थे कि अपने भतीजे के मामले में मौजूद रहें और इनके लिए ठोस इत्मीनान हासिल कर लें। देखिए अपने बच्चे को अगर आप भेज रहे हैं कहीं, अब पता है कि इन्होंने अगर वहां चले जाना है तो भाई मैं सही लोगों के पास भी भेज रहा हूँ या नहीं, किन के हवाले कर रहा हूँ, जरा उनका अता पता हो जाए। दूसरी क्या बात थी कि हजरत अब्बास जो थे ये ट्रेडिंग के लिए जाते थे तो मदीना वालों के साथ इनकी काफी यानी उनको जान पहचान थी, वो भी इनको जानते थे, ये उनको जानते थे, तो इसलिए वो चाहते थे कि जरा जाके देख लेना कौन लोग आ रहे हैं वहां। तो लेकिन देखिए जैसे कि अबू तालिब थे ना, हालांकि कुफर पे रहे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे सपोर्ट किया, इसी तरह हज़रत अब्बास भी कि जब अभी मुसलमान नहीं हुए फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए इस बात की वजह से कि ऐसा ना हो कि कहीं ऐसे किसी खतरे में डाल दो। सबसे पहले हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ही बात की। अब क्या है, आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि घाटी है और रात का आखिरी पहर चल रहा और उस वक्त ये जमा हुए हैं और वो भी यहाँ बैठे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अब्बास यहाँ पे आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ऐसे ही नहीं किया, हजरत अली को भी खड़ा किया कि जस्ट वॉच, कि कोई लोग ऐसी कोई गड़बड़ हो तो फिर पता चल जाए, क्योंकि बहुत खुफिया ये सारा कुछ हो रहा है ना। तो उस वक्त हजरत अब्बास उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम और अपने शहर में इज्जत और हिफाजत के साथ हैं, लिहाजा अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम इन्हें जिस चीज की तरफ बुला रहे हो इसे निभाओगे और इन्हें इनके मुखालिफिन से बचा लोगे तो तुमने जो जिम्मेदारी उठाई है इसे तुम जानो, वरना अभी से इन्हें छोड़ दो। जाए ना मार कि ये ना हो कि तुम ले जाओ वहां पे दूसरे इंसान को रुसवा करो या वहां पे उनकी जान की प्रोटेक्शन ना करो, तो ठीक है अभी कम अज कम अपने कबीले में तो बैठे हुए हैं, कम अज कम कितने भी दुश्मन हो फिर भी अपने खून वाले लोग तो हैं जो फिर भी साथ खड़े होंगे। उस जमाने में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी का कोई कबीला नहीं होता था ना तो कोई नहीं परवाह करता था उसका, कोई खून करे कुछ भी उसको करे, तो अब तुम ले जा रहे हो तो फिर सोच समझ के ले जाना। इसके जवाब में अहले यसरब के तर्जुमान हजरत बर्रा बिन मारूफ, ये इनके सरदार थे समझ लें, उन्होंने कहा हम सिपको वफा का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी रूहें निछावर करने का इरादा रखते हैं, लिहाजा अल्लाह के रसूल आप बात करें और अपने लिए और अपने रब के लिए जो अहदो पैमान पसंद हो लीजिए। वो कह रहे थे कि आप ठीक है आप बीच में से हट जाए, या रसूलुल्लाह आप बताएं कि आप किस कंडीशन पे हमारे पास आएंगे, कोई शरायत रखेंगे ना, किस कंडीशन पे आएंगे हमारे पास, हम आपको ले जाने को तैयार है, हम अपनी जाने निछावर करने को तैयार है, तो आप बात करें। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाई, आपने कुरान की तिलावत की सबसे पहले तो, और उसके बाद अल्लाह की तरफ दावत दी, इस्लाम की रगबत दिलाई और अपने रब के लिए अहद लिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये है अहद, ये मेरी यानी शरायत है जिनके ऊपर मैं तुम्हारे साथ ये जो बैत लूंगा जिस चीज के ऊपर। नंबर वन, तन्हा उसी की इबादत करोगे और उसके साथ किसी चीज को शरीक नहीं करोगे। अहले यसरब ने कहा हम किस चीज पर आपसे बैत करें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चुस्ती और सुस्ती, हर हाल में बात सुनोगे और मानोगे, यानी समय ना वाताना पे कभी बात को रिजेक्ट नहीं करोगे। तंगी और खुशहाली, हर हाल में माल खर्च करोगे। नंबर थ्री, भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। नंबर फोर, अल्लाह के रास्ते में उठ खड़े होगे और इसके बारे में किसी मलामत घर की मलामत तुम्हें नहीं रोकेगी। यानी कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी बुरा भला करे, अल्लाह के रास्ते में खड़े होने के लिए तुम परवाह नहीं करोगे। और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, ये सबसे अहम है, तो मेरी मदद करोगे और जिस चीज से अपनी जान और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते, उससे मेरी हिफाजत करोगे। यानी जैसे तुम प्रोटेक्शन देते हो ना अपने बाल बच्चों को, उस तरह तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। ये कितनी बड़ी बात थी, तो सिंपल बात नहीं है। यानी इस तरह से अपने आप को, अपनी जानों को, अपनी जैसे इंसान अपने बच्चों के लिए कोई चीज का नुकसान या कोई चीज की तकलीफ को सोचता नहीं है कि नहीं ये मेरे बच्चे, मैंने इनके लिए करना। इस तरह तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्टैंड करोगे और तुम्हारे लिए जन्नत है। और हजरत उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत में है कि हमने इस बात पर भी बैत की कि हुकूमत के बारे में अहले हुकूमत से नजा ना करेंगे, यानी कोई झगड़ा नहीं करेंगे हम। इस पर हजरत बर्रा बिन मामूर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, हम यकीनन इस चीज से आपकी हिफाजत करेंगे जिससे अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं, लिहाजा आप हमसे बैत लीजिए। बस आप, यानी वो ऐसे रेडी थे ना, बस आप हमसे बैत ले, हम अल्लाह की कसम पर जंदाने जरब व हर्ब हैं, यानी हम जंग के बेटे हैं। जो कहते हैं ना कि यानी इतने ज्यादा ये जंगजू और जंग में इतने माहिर थे, और हथियार हमारा खिलौना है, हम क्यों जंग से लड़े, जंग से क्यों हम डरेंगे। हमारी यही रीत बाप दादा से चली आ रही, यानी जंग करना, आपके लिए खड़े होना, आपके लिए लड़ाई करना, ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने में अबुल हैसम बिन तैहान ने बात काटते हुए कहा, अब ये तो एकदम जोश में बोल रहे हैं ना, तो वो उन्होंने कहा कि एक मिनट, पहले बात काटी उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमारे और कुछ लोगों के दरमियान एहदो पैमान की रस्सियां, उस जमाने में कॉन्ट्रैक्ट होते थे ना, कोई हलीफ होते थे किसी के साथ, कोई कुछ होते थे, और अब हम इन्हें काटने वाले, जाहिर है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाएंगे तो कौन एहदो पैमान रखेगा, सब कट ऑफ हो जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसा कर डालें फिर अल्लाह आपको गलबा अता कर दे और आप हमें छोड़ के अपनी कौम के पास पलट जाए। सुभान अल्लाह, आपने, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कबीले की बात, किंदा कबीले की, जिन्होंने क्या कहा था कि जब आपको फतह मिल जाएगी तो पर आप हमें हुकूमत देंगे, उनको हुकूमत की थी, इनको क्या है, जब आपको गलबा मिल जाएगा तो ये तो नहीं कि आप हमें छोड़ के चले जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा, नहीं बल्कि खून खून है और बर्बादी बर्बादी है। यानी ये हम एक है, अब हमारा ब्लड एक है, मैं आप लोगों में से हूँ और आप लोग मुझ में से हैं, जिससे आप जंग करेंगे मैं जंग करूंगा और जिससे आप सुलह करेंगे मैं सुलह करूंगा। यानी इतनी बड़ी बात थी। और इस बारे में फिर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वाकई ये बात फिर सच साबित की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फतह मक्का के वक्त, देखिए मक्का फतह हो चुका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लैंड में है, ये वो मक्का है जिसको आप छोड़ने पे राजी नहीं थे, और जब जा भी रहे थे हिजरत करके, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो कैसे आपने मुड़ के देखा था और कहा था कि मक्का मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता अगर ये लोग ना मुझे यहाँ से निकाल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जाना चाहते थे, अब तो वो कौन कर हो गया, अब तो वो फतह हो गया, अब कौन सी चीज रोक रही है। वही घर है जिसमें रहा करते थे हजरत खतीजा के पास साथ, और वही घर है जिसमें अबू तालिब के पास रहा करते थे, अपना बचपन गुजारा, अपनी जवानी गुजारी, नबुवत यहाँ पे मिली, इतने यहाँ पे एक इंसान का समझ ले उसकी होम लैंड वहाँ पे आ गए, तो अब तो कोई नहीं रोकने वाला था कि यहाँ पे ना स्टे करते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह किया और वापस गए क्योंकि इनके साथ अहद किया हुआ था। और फिर एक इतना खूबसूरत वाकया है जो मुझे पर्सनली इतना पसंद है कि जब उसके बाद गज़वा हुनैन हुआ था और उसमें माले गनीमत बांट दिया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कई कबाइल को बहुत ज्यादा माल दिया था, और वो किस वजह से दिया था कि इन तालीफ कल्ब के लिए, ताकि इनके दिल नरम हो और इस्लाम की तरफ आए, क्योंकि बनू सकीब वगैरह एंड में मुसलमान हुए थे, तो बहुत बहुत कुछ उनको दिया, बहुत ज्यादा माल दिया। यानी एक तो पोर्शन होता है ना जो जंग लड़ने वाले उन मुजाहिदीन को दिया जाता है, जो एक्स्ट्रा सरप्लस होता है वो जिसको मर्जी सरदार चाहे बांट दे, चाहे उन्हीं मुजाहिदीन को वापस दे दे, चाहे बैतुल माल में डाल दे, चाहे कहीं पे भी खर्च करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दे दिया। तो अब उस वक्त थोड़े से, मैंने आपको पहले भी बताया, थोड़े से अंसार में ना कुछ इंसान तो थे ही ना, थोड़े गिले शिकवे होने लगे कि ये क्या बात हुई, जिस वक्त कुर्बानी का वक्त था, मुसीबत का वक्त था, उस वक्त तो हमने साथ दिया, अब जब माल बंटने का वक्त आया, जब फल खाने का वक्त आया, तो ये प्यारे हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी ने ये बात पहुंचा दी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने फरमाया कि इनको जमा करो, और जब सबको जमा कर दिया गया तो आपने फरमाया, ए अंसार के लोगों, तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें कौन सी बात नागवार गुजरी है, जब मैं तुम्हारे पास आया था तो क्या तुम गुमराह नहीं थे, अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें हिदायत दी, क्या तुम गरीब नहीं थे, अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें मालदार किया, क्या तुम आपस में दुश्मन नहीं थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। आपको बताया था ना कि जंगे बवास हुई थी और उसके अंदर इनके बहुत खून खराबा हुआ था। तो अंसार ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल का बेपनाह फजल एहसान है। फिर आपने फरमाया, ए अंसार के लोगों, अल्लाह की कसम, अगर तुम चाहो तो तुम कह सकते हो, और तुम कहो तो तुम ठीक कहोगे, और मैं तुम्हारी तस्दीक करूंगा, तुम कहो ए मोहम्मद, आप इस साल में हमारे पास आए थे, क्या आपको लोग झुठला रहे थे और हमने आपकी तस्दीक की, और आप बेयारो मददगार आए थे और हमने आपकी मदद की, और आप धुतकारे हुए थे और हमने आपको पनाह दी, और आप नादार थे और हमने आपकी गमखारी की। अंसार के लोगों, क्या तुम सिर्फ दुनिया की हकीर सी चीज के बारे में मुझसे नाराज हो गए, जिसके जरिए मैंने कुछ लोगों की दिलजोई की है ताकि वो इस्लाम ले आए, और तुम्हें तुम्हारे इस्लाम के हवाले कर दिया। अंसार के लोगों, क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि लोग बकरियां और ऊंट लेकर जाए और तुम अल्लाह के रसूल को अपने घर लेकर जाओ। इस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जो चीज तुम लेकर वापस जाओगे उससे कहीं ज्यादा बेहतर है जो लोग वापस लेकर जाएंगे। अगर हिजरत ना होती तो मैं भी अंसार का एक आदमी होता। अगर लोग एक वादी और एक घाटी में चलेंगे और अंसार दूसरी वादी और घाटी में चलेंगे, तो मैं अंसार की वादी और घाटी में चलूंगा। अंसार मेरे करीब तरीन है और दूसरे लोग उनके बाद है। ऐ अल्लाह, अंसार पर रहम फरमा, इनके बेटों पर, इनकी बेटियों पर, इनकी औलादों पर रहम फरमा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ये सुन के वो इतना रोए, उनकी दाढ़ियां आंसुओं से भीग गई, और वो कह रहे थे, हम आपकी तकसीम पे राजी हैं। और वाकई फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लेकर गए, दुनिया दौलत को ले गए, और वो किसको लेकर गए, उस रात को, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिये वफात भी वही हुई, और आज मदीना की जो अहमियत है वो किस वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, वरना कौन पूछता इस जगह। तो वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यानी तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, जब एक दफा तुम मुझे ले जाओगे तो मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। ठीक इस फैसला कुन लम्हे में हजरत अब्बास बिन उबादा बिन नदला रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, उन्होंने कहा, आप लोग जानते हैं इनसे किस बात पर बैत कर रहे हैं, इनसे सुर्ख और सियाह यानी सारे इंसानों से जंग पे बैत कर रहे हैं। वो खड़े हुए और उन्होंने ये कहा लोगों को, लोगों तुम्हें समझ भी है तुम किस बात पे बैत कर रहे हो, ये कोई मामूली बात नहीं, समझ लो कि पूरी दुनिया से तुमने जंग मोल ले ली, क्योंकि सारी दुनिया दुश्मन हो जाएगी ना। आप आज के वक्त में देखें, कोई एक इंसान है जो वांटेड हो सारी दुनिया में, वो किसी जगह जाके छुप जाए, पूरी दुनिया उसके पीछे भागे। आपने ऐसा हिस्ट्री में अभी देखा ना रिसेंटली, कैसे लोग उसको ढूंढते थे। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कौम के पास जाना कोई मामूली बात नहीं थी, समझ लें सब भूखे भेड़ियों की तरह उनके ऊपर पल पड़ते। ये आप इनको ले गए, कैसे आपने इनको पनाह दे दी। इसलिए अगर आपको अंदाजा है कि जब आपके अम्बाल का सफाया कर दिया जाएगा और आपके अशराफ कत्ल कर दिए जाएंगे, जो आपके बड़े बड़े लोग हैं ना उनको कत्ल कर दिया जाएगा, तो आप इनका साथ छोड़ देंगे, तो फिर अभी से छोड़ दें। नहीं, अगर कल को तुमने इनका साथ छोड़ना है ना, तो बेटर कि आज ही तुम छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया और आखिरत की रुसवाई है अगर तुमने ओथ लेके उसके बाद इनका साथ छोड़ा तो। और अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि माल की तबाही और अशराफ के कत्ल के बावजूद आप अहद निभाएंगे, तो फिर इन्हें ले लीजिए, क्योंकि वल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाई है। वाकई जो उनको ले गया, और फिर उसने दुनिया, जब वही मैं आपको पहले भी शायद बात करती हूँ, जब मदीना जाते हैं और उन लोगों को देखते हैं तो सोचते हैं, अल्लाह यही वो लोग होंगे इनमें से जिन्होंने मेरे नबी को पनाह दी, ये उन्हीं की औलादे हैं। सुभान अल्लाह। नहीं, ये अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, अब्बास बिन उबादा ये अंसार में से, जिनको हम अब अंसार कहते हैं, ये उनमें से, अभी हम इनको अंसार नहीं कहेंगे, ठीक है, अंसार उस वक्त होंगे जब माइग्रेशन के बाद। तो लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा हम इन्हें माल की तबाही और अशराफ के कत्ल के खतरे के साथ लेते हैं, चाहे हमारे माल लुट जाए, हमारे लोग कत्ल हो जाए, अल्लाह के रसूल बताइए इसके बदले में हमारे लिए क्या है। और वो एक लफ्ज जो वो सुनना चाहते थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से निकाला, जन्नत, ये इस बैत के बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। आपने फरमाया जन्नत, लोगों ने कहा फिर अपना हाथ फैलाए, फिर देर किस बात की। आपने अपना हाथ फैलाया और लोग बैत के लिए लपके, मगर ऐन उसी वक्त आपका हाथ हजरत असद बिन जुरारा ने पकड़ लिया। याद है असद बिन जुरारा कौन है, पिछली क्लास में मैं पढ़ा था ना, मुसअब बिन उमैर किसके घर में रहे थे, असद बिन जुरारा के। और ये वो ही है जो फर्स्ट टाइम जब पहली मुलाकात हुई थी उसमें भी ये थे। और कहा अहले यसरब जरा ठहरो। अब देखिए जो हिकमत वाले लोग होते हैं ना वो ऐसे नहीं होते कि बस, अक्सर हमारे लोग क्या होते हैं, हम इतने जज्बाती होते ना, बस जरा सी बात का, इतने जज्बात में आगे जरा सी बात का हमें वो जोश हो गया ना तो हम एकदम लपकते हैं किसी भी फैसले को और सोचते नहीं है। उसके बाद जरा जब होश आता है तो फिर कहते हैं हाय पता नहीं क्यों हमने कर लिया, ना ही करते ऐसा। तो लेकिन जो बाहिकमत और जिनमें ठहराव होता है उनकी बात देखिए, वो कहते हैं अहले यसर जरा ठहरो, हम आपकी खिदमत में ऊंटों के कलेजे मार के, यानी बहुत लंबा सफर, ऊंटों के कलेजे मारने का मतलब क्या, जिसपे ऊंट चल चल के उनका ये हाल हो जाए, इतना लंबा सफर करके इस यकीन के साथ हाजिर हुए कि आप अल्लाह के रसूल हैं, यानी हमें इसमें कोई शक नहीं। आज आपको यहाँ से ले जाने का माना है सारे अरब से दुश्मन। अब वो सराउंडेड बाय किससे है, अरब, सारे अरब से दुश्मन, अपने चीदा सरदारों का कत्ल और तलवारों की मार। यानी वो बता रहे हैं कि तुम इसको बहुत बड़ी कोई वो ना समझो कि उसके बाद पता नहीं क्या तुम्हें एकदम से कुछ कोई रोजी पिक्चर नहीं इतनी जहन में रखनी चाहिए, उसके बाद जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बिल्कुल उनको वाजे दिखा रहे हैं, बात बता रहे हैं। अब अगर आप लोग ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं तो इन्हें ले लें और आपका अजर अल्लाह पर है, और अगर आप लोग अपने मुतल्लिक कोई अंदेशा रखते हैं तो इन्हें अभी से छोड़ दें, ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा काबिल उजर है। यानी फिर तुम अल्लाह को कह सकोगे कि या अल्लाह हमने बैत थोड़ी ली, लेकिन अगर तुमने बैत कर ली उसके बाद अगर इनको छोड़ा ना तो फिर दुनिया और आखिरत की रुसवाई है तुम्हारी। क्योंकि देखे ना, एक इंसान किसी के भरोसे के ऊपर कहीं गया, वो ना पीछे कह रहा ना आगे कह रहा, तो उससे बेहतर है कि तुम आज ही इनको छोड़। अल्लाह अकबर, उनको क्या पता था कि रात के इस पहर में जो बात वो बोल रहे हैं, किस तरह आज ही सोच रही थी कि 2015 में कोई लोग बैठे थे कहीं उनके नाम ले रहे होंगे, और रात के बाद ऐसा वक्त है जिस वक्त अभी इस्लाम का कोई नाम ऐसा नहीं है कि कोई बहुत उसकी वजह से लोगों को हार पहनाए जा रहे हो या बड़ी कुतारी से हो या इस्लाम का बोलबाला हो या कुछ हो। ये उस वक्त वो दिन है जो अभी उठ रहा है, इसीलिए वो लोग जो जब कोई भी तहरीक उठती है उस वक्त उसके साथ होते हैं ना, जो उनका मकाम होता है साबिकून अलवलून का, वो बाद वालों का नहीं हो सकता, जो शुरू में उसके साथ लगते हैं, बाद में तो लोग देखा देखी भी लग जाते हैं। इसीलिए तो फतह मक्का के बाद जो लोग मुसलमान हुए, अल्लाह ताला ने फरमाया उनका वो मकाम नहीं है जो उससे पहले मुसलमान होने वालों का, और उनमें भी जो साबिकून और अव्वलून थे। तो ये रात के वक्त इस वक्त ये एक बैत ले रहे, सोचिए 12 तारीख होगी, चांद भी होगा, अंधेरी रात है, चांद की रोशनी है, उसमें ये छोटे से लोग बैठे हैं और बैत कर रहे हैं। लोगों ने कहा असद अपना हाथ हटाइए, वल्लाही हम इस बैत को नहीं छोड़ सकते, सुभान अल्लाह, ना तोड़ सकते। इसके बाद एक एक आदमी ने उठ के बैत की और राजे तरीन कौल के मुताबिक सबसे पहले बैत करने वाले खुद हजरत असद बिन जुरारा थे, एक कॉल ये भी है कि अब्दुल हैसम बिन तैहान थे, और एक कॉल ये है बर्रा बिन मारूर थे। दोनों औरतों की बैत सिर्फ जुबान से हुई, उनसे मुसाफहा नहीं हुआ। अब आप यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये भी देखें कि ये बैत, आप इसके पॉइंट्स देखें इस बैत में और पिछली बैत के भी देखें कि पिछली बैत में क्या पॉइंट्स थे, सिर्फ सिंपल सिंपल बातों के ऊपर बैठ थी कि चोरी नहीं करोगे, किसी को शरीक नहीं करोगे, अल्लाह का चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, ये सारी बातें जो हम पहली बैते अकबा में पढ़ चुके हैं। और इसमें भी आप फर्क देखिए दूसरी बैते अकबा में क्या फर्क है पॉइंट का। इसमें एक जो बहुत बड़ा फर्क है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन का, उनके साथ खड़े होने का। पहली वाली बैत में ये नहीं था, इसीलिए उस बैत को बैतुल निसाब भी कहते हैं। औरतों की बैत किस लिए कहते हैं, यानी उसमें कोई फाइटिंग, कोई लड़ने मरने, कोई जंग, इस तरह की कोई बात नहीं। सिंपल सिंपल बस बेसिक इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बात थी, तो अच्छे रहो, जिना नहीं करो, कत्ल नहीं करो, चोरी नहीं करो, मतलब जो एथिक्स होती है, ठीक है, वो उन बातों के ऊपर रहती। लेकिन दूसरी वाली में ये था कि हम इनके लिए खड़े होंगे, और ये जंग पे थी, और इस पे औरतों ने भी बैत की। ये बड़ी बात है,
जैसे दो औरतों के नाम ही,
हाँ ये दो औरतों के नाम है ना जो शुरू में आए हैं, नुसैबा बिनते काफ और अस्मा बिनत अमर। जब शुरू का पेज हमने देखा ना, तो इसमें यही दो औरतें ना जिन्होंने बैत की, तो औरतों ने भी की, और देखिये उन्होंने इसको निभाया। मैंने आपको बताया ना, जंगे उहद में भी शामिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफेंस में खड़ी हो गई थी उम्मे अमारा, और इन्होंने 12 जख्म अपने ऊपर खाए थे, सुभान अल्लाह। और इनका इनके बेटे को भी मुसलमा कज़ाब ने शहीद कर दिया था, इनकी आंखों के सामने इनके बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो सुभान अल्लाह, इनकी कुर्बानियां कभी इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर बात करनी हो तो इनकी कुर्बानियां बहुत है उम्मे अमारा की। और देखिये ये वो लोग हैं जिनको जन्नत का वादा मिल गया दुनिया में इस बैत करने पे, सुभान अल्लाह। तो ये अच्छा, दूसरी एक बहुत अहम पॉइंट यहाँ पे ये है जो आप लोगों ने याद रखना, और वो ये है कि ये जो बैत हो रही है इसमें ये नहीं उन्होंने कहा कि हम ऑफेंसिव वॉर में आपका साथ देंगे, यानी जब आप अटैक करेंगे तो उसमें आपका साथ, डिफेंसिव में कोई आपके ऊपर अटैक करेगा तो हम खड़े होंगे, ये याद रखिएगा। क्योंकि आगे जाके बदर के उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इन लोगों से पूछा था कि आप लोग बताएं आप लोगों की क्या राय, यानी अंसार की तरफ इशारा था कि आप लोग बताएं कि, क्योंकि वो नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पर अटैक करेंगे कि हम आप क्या इधर को काफले की तरफ को जाए या उनके साथ लड़ेंगे, बाद में आएगा ना बदर के उसमें, क्योंकि वो ऑफेंसिव वॉर थी, डिफेंसिव नहीं थी, तो डिफेंड नहीं आप कर रहे थे, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और इन्होंने इस बात के ऊपर कोई बैत नहीं ली कि हाँ जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम उस वक्त भी साथ देंगे, तो ये इनके सरदार हैं। और इसके अंदर ज्यादा राज यही है कि असद बिन जुरारा ने सबसे पहले बैत की थी। अच्छा दूसरी बात थोड़ी सी इसमें यहाँ पे ये है कि हजरत अब्बास जो थे ना, उन्होंने जब इन लोगों को देखा था तो वो जरा कुछ परेशान हो गए थे इनको देख के, इसलिए कि वो इनमें से किसी एक को भी नहीं पहचानते थे, ये सब यंगस्टर थे। आपको पता, मैंने बताया था जंगे बवास में इनकी सारी जो ऊपर की लीडरशिप या ऊपर के जो बड़े बड़े सीनियर लोग थे वो सब मर चुके थे, खून खराबा इतना हुआ था कि कोई उनमें से बचा नहीं था, ये यूथ है। उन्होंने कहा ये नौजवान से लोग हैं, मैं इनको जानता पहचानता हूँ नहीं, मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपको इनके साथ भेजने पे, क्योंकि इनका क्या पता था, जवान है, जोश में आज कुछ कह रहे हैं कल को क्या करें। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को ऐसे लोगों के हवाले थोड़ी करना था, वैसे होते फिर उन्होंने कैसा इसको निभाया। और हज़रत आयशा फरमाती कि जंगे बवास जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तोहफा थी। कैसे तोहफा थी, समझ आती है बात, कैसे तोहफा हो सकती है, बिल्कुल अच्छा, जो ज्यादा एज में होते हैं वो जल्दी मानते नहीं है, जो यूथ होती है आप देखिए हर प्रॉफिट के साथ सबसे पहले यंग लोगों ने उनको इन पे ईमान लाके उनका साथ दिया। जो इतने ज्यादा आप एज में बढ़ते जाते हैं ना, इंसान अपनी मसलहतें बहुत देखता है। आज हमें देख ले, हम अपने वक्त को भी याद करें, जब हमारी यंग एज थी तो हम कितने जज्बाती और ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद जब एज बढ़ती जाती तो बहुत ही ठहराव आ जाता है कि बस ठीक है इतना भी नहीं करने की जरूरत, जरा होश से हम काम लें, है ना। तो वो जो यंग ब्लड होता है ना उसमें जोश भी होता है, हिम्मत भी होती है, और वो एक्सेप्ट करने को ज्यादा जल्दी तैयार हो जाते हैं, और दूसरे लोग मसलहतें बहुत देखते हैं। और फिर आप ये देखें कि जब उन्होंने ये देख लिया कि नहीं ये तो वो वाले लोग ही नहीं है, मैं तो इनमें से किसी को जानता नहीं, तो उनको एक परेशानी लाहक हो गई कि क्या होगा, अब किन के हवाले इनको कर रहा हूं। और इनकी भी थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लें कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लोग यमन से ताल्लुक रखते थे और सर हजरत जो थे ना यमनी लोग थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन वालों के बारे में जो फरमाया कि उनके दिल नरम होते हैं और दीन यमन में है, ईमान यमन में है और हिकमत यमनी है, इतनी यमन वालों की तारीफ फरमाई और इन्होंने फिर इसको निभाया, अपनी बैत को निभाया। ओरिजिनल जब बहुत सदियों पहले, जैसे अब हम कहें कि हम भाई इंडिया से आए या कहीं और से, किस तरह ये कई सौ साल पहले यहाँ पे आके कहाँ से आबाद हुए थे, यमन से। तो अब क्या हुआ, 12 नसीब बैत मुकम्मल हो चुकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से तलब किया कि वो अपने आप में से 12 नकीब पेश करें, यानी समझ लें कि जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कुरान करीम में कि नकीब यानी समझ लें इंचार्ज, 12 इंचार्ज जो अपनी कौम के निगरान और इनके मामलात के जिम्मेदार हों, जिस पर 9 आदमी हजरत से और 3 आदमी और से मुंतखब किए गए। हजरत के नकबा के नाम ये हैं, साद बिन उबादा बिन दलियम, असद बिन जुरारा बिन अदस, साद बिन रबी बिन अमर, अब्दुल्ला बिन रवाहा बिन सालबा, राफे बिन मालिक बिन अजलान, बर्रा बिन मारूद बिन फखर, अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम, उबादा बिन हामिद बिन कईस, मुंजर बिन अमर बिन हुनैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। औस के नुकबा के नाम ये हैं, उसैद बिन हुज़ैर बिन सिमाक, साद बिन खैतमा बिन हारिस, रफा बिन अब्दुल मुंजिर बिन जुबैर, और कहा जाता है कि अबुल हैसम बिन तैहान, जब इनका इंतखाब हो चुका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप लोग अपनी कौम के जुमला मामलात के कफील हैं, यानी आप इंचार्ज हैं अपनी अपनी कौम के मामलात के, जिस तरह हवारी ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से कफील हुए थे और मैं अपनी कौम मुसलमानों का कफील हूँ। ठीक है, इन सब ने कहा जी हाँ। अब ये 12 लोग हैं जो इंचार्ज होंगे, अपनी इनके दीनी मामलात को देखेंगे कि दीन में एक्सेल कर रहे हैं, आगे बढ़े, कोई इनके अंदर बुराई ना पैदा हो, कोई इनके अंदर ऐसी, ये एक उनको मॉनिटर्स बना दिया।
तो वो लीडर थे,
वो लीडर है, इनको सिलेक्ट किया गया। हाँ, इन सब ने कहा जी हाँ। इनमें से कुछ लीडर भी हैं, जैसे ये अभी मैंने आपको बताया ना, बरा बिन मारूर जैसे एक लीडर है। तो इन सब ने कहा जी हाँ। ये है दूसरी बैत अकबा। अब यहाँ पे बैत अकबा मुकम्मल हुई। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब तक की जिंदगी में सबसे अजीम और अहम बैत थी। इसकी वजह से वाकयात का रुख बदल गया और तारीख की लाइन तब्दील हो गई। देखिए सुभान अल्लाह, इसके बाद ही तो फिर वो वक्त आया है कि यानी उसके बाद ज्यादा दिन नहीं लगे, इसके कुछ महीने बाद ही हिजरत हो गई। ये ज़िलहज की बात है ना, हज हो रहा है ना, तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर में ही तकरीबन रबीउल अव्वल के टाइम तक, यानी 2-3 महीने बाद हिजरत हो गई। क्योंकि अब इन्होंने कह दिया ना, ओथ ले लिया ना कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन करेंगे, तो समझिए बिल्कुल एंड का टाइम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी का। और इसके अंदर अब ये बैत करने के बाद अब समझ लें बिल्कुल हालात डिफरेंट हो जाएंगे, मदनी दौर शुरू हो जाएगा, मक्की दौर इज ओवर। तो इसलिए ये बहुत अहम बैत थी, क्योंकि इसके ऊपर बेस करके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे ना, पिछली वाली बैत पे नहीं। अब ये देखिए बैत से भी आपने कितना कुछ सीखा है ना, कि शुरू में थोड़े लोग आए, उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उसके बाद अब देखिए 70 से ऊपर लोग आ गए, और 70 से ऊपर लोगों में औरतें भी हैं, और ये 70 लोग सिर्फ नहीं है, इनके पीछे लोग हैं जो इनके कबीले के यानी इनकी फैमिलीज हैं, वो तो पीछे बैठी हुई है ना, तो कहा जाता है 200-300 लोग हो गए थे। और ये इतने लोग हैं जितने के 13 साल के मक्की दौर में जितने लोग हुए थे, ये 2-3 सालों में सब इतने हो गए मदीना में। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है ना, 13 साल में मक्का में जितने तकरीबन हुए उतने मदीना में इतनी थोड़ी देर में हो गए। और ये इससे पता चलता है कि ये कितने जल्दी खैर को लेने वाले थे, इन्होंने खैर को कैसे समेट लिया। इससे हमें ये भी मालूम होता है कि देखो हम कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, कभी जजमेंटल ना हो, ये थोड़े से लोग हैं इनसे क्या फायदा होगा, आपको क्या पता उन थोड़ों के अंदर कितनी खैर और बरकत हो कि उनसे आगे कितनों तक पहुंचे। हमने थोड़े लोगों को कहा जब तक इतना बड़ा मजमा ना हो, आपको क्या पता इतना बड़ा मजमा उनमें से कोई भी खैर वाला ना हो। और मुसअब बिन उमैर देखें सुभान अल्लाह वो कैसे सहाबी रसूल है कि उनकी वजह से वहां पे फैला ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी पहुंचे ही नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो खैर की कुंजियां होती है, जहां जाते वो खैर ही फैलाते, सुभान अल्लाह वो वहां पे गए और कितनी खैर उनके थ्रू फैली। और फिर यहाँ पे ये भी देखें कि दो औरतें थी जिनका स्पेशली यहाँ पे कहा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैत हाथ टच करके नहीं की, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम मोमिनों के बाप हैं, ठीक है, और वो औरतों के साथ कोई ऐसी बात नहीं थी, उम्मती हैं। लेकिन इतने बड़े मकाम पे हो के इतने तकवा के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफहा नहीं किया। तो अब फिर आज के वक्त में एक आम मुसलमान के लिए अलाउड हो सकता है कि वो किसी औरत को टच करे और उसके साथ हाथ मिलाए, या हम औरतें किसी मर्द के साथ हाथ मिलाएं, क्या ये हमारे लिए जायज हो सकता है? जबकि हजरत आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी गैर महरम औरत को टच नहीं किया, वरना बैत के लिए तो हाथ के ऊपर हाथ रख के बैत ली जाती ना, मर्दों के साथ ऐसे ली गई थी, लेकिन औरतों के साथ ऐसे नहीं, उनके साथ जुबानी बैत होती। बाद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बैत ली औरतों के साथ वो भी कभी भी हाथ में हाथ लेके नहीं ली, वरना क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात के ऊपर कोई ऐसी बात हो सकती है? तो अगर आप इससे यानी सीरत से अगर आप ये मैसेज लें कि हमने कभी भी किसी को, चाहे कोई हाथ बढ़ाए भी, उसको बहुत आराम से पोलाइटली कह देना कि नहीं हम नहीं मिला सकते, हमारे रिलीजन में ये नहीं अलाउड, दैट्स इट। लेकिन हम शर्माते रहते हैं कि हम कैसे करें और बस आप आगे ही कर देते हैं। तो अच्छा फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये इस अब ये दूसरी बैत अकबा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट सीरत में आ गया। जब बैत पूरी हो चुकी और लोग बिखरने ही वाले थे तो एक शैतान को इसका पता चल गया, अल्लाहु अकबर, उसने नहायत बुलंद आवाज से जो शायद ही कभी सुनी गई हो पुकार लगाई, खैमे वालों क्या मोहम्मद से निपटोगे, इस वाला दीन बेदीन इसके साथ है और वो तुमसे लड़ने के लिए जमा हो रहे हैं। यानी शैतान जो था ना वो इस कदर डेस्परेट हो गया ना कि ये हो क्या रहा है, अच्छा ये तो कुछ और, अब वो कर कुछ नहीं सकता। हालांकि देखिये शैतान कभी भी सामने आके कोई चीज नहीं करता, हमेशा छुपा रहता है ना, लेकिन वो इस कदर डेस्परेट हो गया कि उसने एक चीख लगाई। आप सोचिए रात के अंधेरे में सन्नाटे में कोई चीख लगाए कि देखो देखो ये सारे जमा हो रहे हैं तुम्हारे पर हमला करने के लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ अल्लाह के दुश्मन मैं तेरे लिए जल्द ही फारे हो रहा हूँ। आपने फरमाया था ये इस जगह का शैतान है, इस घाटी का, इस जगह का वो शैतान था और उसने ये पुकार लगाई थी और लोगों से फरमाया कि अपने अपने डेरों पर चले जाएं, जल्दी से चले जाएं और जाके। चुनाचे ये लोग अपने अपने ठिकानों पर वापस जाकर सो गए और वहीं सुबह की। इधर सुबह हुई तो कुरैश ने इस पर एहतजाज के लिए अहले यसरब के खेमों का रुख किया। क्या हुआ था, कुरैश ने सुबह को हर कैंप में अपने लोग भेजे कि बताओ तुम में से कोई था जो रात को उससे मिला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात को जो कोई मिला है, कोई इसका इल्म है? उन्होंने कहा हमें तो कोई नहीं पता, हमें कोई नहीं पता। अब वो आए इनके जब खेमे पे आए ना यसरब वालों के और उन्होंने ये पूछा, अब मुसलमान तो चुप रहे, अब मैंने आपको बताया ना इनके साथ मुशरिकीन भी थे, मुशरिकीन है, यसरब ने कहा ये बातिल खबर है, ऐसी कोई बात हुई नहीं है, जबकि मुसलमानों ने चुप साधे रखी, खामोश है और उनको नहीं पता मुशरिकीन को कि ये मुसलमान है, मिलजुल के आए सारे। चुनाचे कुरैश ने मुशरिकीन की बात खत समझी और नामुराद वापस चले गए। लेकिन बाद में कुरैश को यकीनी तौर पे मालूम हो गया कि खबर सही है, जाहिर है वो तो बाद में तो पता चल गया कुछ अरसे बाद ही। चुनाचे इनके सवारों ने तेज रफ्तारी से अहले यसरब का पीछा किया और साद बिन उबादा और मुंजर बिन अमर को अजाखिर के पास जाकर जा लिया, लेकिन मुंजर बिन अमर ने इन्हें बेबस कर दिया और निकल भागे। अलबत्ता साद पकड़े गए और इन्हें बांध कर मारते और बाल घसीटते हुए मक्का ले जाया गया, लेकिन वहां मुताम बिन अदी, फिर से दोबारा वही नाम आया ना, मुताम बिन अदी और हारिस बिन हर्ब ने उन्हें छुड़ा दिया, क्योंकि वो इन दोनों के काफिलों को मदीना में पनाह दिया करते थे। आप ये देखेंगे ये लोग एहसान को बहुत याद रखते थे, किसी का एहसान होता था ना तो उसको भूलते नहीं थे, उसका बदला जरूर देते थे। अब उनको ये है कि देखो इन्होंने हमारे काफिलों को पनाह दिया करते थे मदीना में, तो इनका हमारे पर एहसान है, हम ये एहसान नहीं इस तरह से भूल सकते। उधर अंसार ने इरादा किया कि मक्का पर धावा बोल दे, मगर इतने में हजरत साद आते दिखाई दिए, लिहाजा तमाम लोग बखैरियत मदीना रवाना हो गए। और ये भी कहा जाता है बात सीरा की किताबों में, ये भी है कि जब शैतान ने जोर से आवाज लगाई और ये इस तरह से हुआ कि लोग अब एकदम उठ जाएंगे और कुछ हो नहीं जाए, तो ये जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे यसरब वाले, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्यों ना हम पहले हमला कर देते, हमारे पास हथियार भी हैं। उस वक्त ज़ाहिर है हज में तो कोई हथियार की जरूरत नहीं होती, मगर इसलिए रखे होते थे कि कोई ऐसे रास्ते में कोई जानवर या कोई इस तरह हमला करे तो उसके लिए रखे होते थे। उन्होंने कहा हमारे पास हथियार भी है, हम हमला कर सकते हैं। दूसरे ये लोग सोए हुए हैं, बेखबर है, अभी गाफिल है, ना इनके पास हथियार है ना ये अभी प्रिपेयर्ड है इसके लिए, तो हम एकदम ऊपर से इनको ले लेते। तो आपने फरमाया नहीं, मुझे इस चीज का तो नहीं हुक्म दिया गया कि मैं ऐसा काम करूं खून खराबे का। आज जो लोग इस चीज को बेस बना के करते हैं ना कि गफलत में किसी को जा लिया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उस वक्त खून खराबा करके उनके साथ भाग जाते वहां से, है ना, ये आसान था ना, इनको लेके और भाग जाते, बैत तो इन्होंने कर ली थी। लेकिन फरमाया नहीं, मुझे इसका नहीं हुक्म दिया, इस्लाम खून खराबे का दीन नहीं है। तो वो जब उन्होंने जब देखा ना कि वो तो आ ही नहीं रहे और वो तो उनको ले गया, तो इन अब ये अंसार ने कहा कि हम जाके मक्का में हमला कर लेते, मगर उतने में अल्लाह ताला के मशीयत देखे कि हजरत साद आते हुए दिखाई दिए और तमाम लोग बखैरियत मदीना रवाना हो गए। मुसलमानों की हिजरत, उसके बाद क्या हुआ कि अकबा की इस दूसरी बैत के बाद आम मुसलमानों ने मदीना के लिए हिजरत शुरू कर दी, जबकि बाद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु इससे पहले ही हिजरत कर चुके थे। आपको पता है ना, जैसे मुसअब बिन उमैर थे, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, ये और भी कई मुसलमान पहले जा चुके थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुसलमानों का दारुल हिजरत दिखाया जा चुका था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इसकी खबर भी दे चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा है कि मैं मक्का से एक ऐसी जमीन की तरफ हिजरत कर रहा हूँ जहाँ खजूरें हैं, मेरा ख्याल है कि यमामा या हिजर है, लेकिन वो मदीना था। अब क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बैत के बाद मुसलमानों को जमा किया, उनको कहा कि आप लोग ऐसा करें हिजरत शुरू कर दें, तो मुसलमानों ने हिजरत शुरू कर दी। और आपको ये ख्वाब भी दिखाया गया था कि ये जमीन होगी ऐसी जिसमें खजूरें, और एक और रिवायत में है कि मुझे तुम्हारा दारुल हिजरत दिखाया गया दो हर्रों लावे की चट्टानों के दरमियान एक नशेबी जमीन है, अब वो या तो हिजर है या यसरब। अब ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में आया था कि लावे हैं, और पता है मदीना में कुछ ही जमाने में बहुत पहले कोई लावा फटा होगा, उसके रिमेन्स भी इस तरह से आज भी अगर जहाज वगैरह से देखे तो वो लावा वहां पे जो जमा हुआ है तो वो पता चलता है। तो वो जो दो चट्टानों के दरमियान जो जगह है, जो खजूरों की जमीन है, वहां तुम लोग हिजरत करोगे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया। और फिर खास अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो मदीना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग जाना शुरू कर दो। अब क्या हुआ, सबसे पहले मुहाजिर उम्मे सलेमा के शौहर अबू सलेमा मखदूमी थे, वो बीवी बच्चे के साथ निकले, लेकिन बीवी को उसकी कौम ने रोक लिया और बच्चे को अबू सलेमा के घर वालों ने मां से छीन लिया और अबू सलेमा तनहा मदीना जा सके। ये बैत अकबा से कोई एक साल पहले का वाकया है, फिर कोई साल भर बाद इन लोगों ने बीवी को छोड़ दिया और वो अबू सलेमा से जा मिली। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ कि अबू सलेमा और उम्मे सलेमा कौन है ये लोग। शाबाश, सबसे पहली जो पहली हिजरत थी ना हबशा की तरफ, उसमें ये कपल था, ठीक है, और उम्मे सलेमा कौन है, महाबुल मोमिनीन में थी, ठीक है। इनकी पहले शादी अबू सलेमा से हुई भी थी, इनका असल नाम हिंद है लेकिन ये ज्यादा मशहूर उम्मे सलेमा के नाम, तो अबू सलेमा से हुई भी थी। आपको पता है ये कितना एक आइडियल कपल था, बहुत मोहब्बत करने वाले थे, इसीलिए जब अबू सलेमा की शहादत हुई थी तो हजरत उम्मे सलेमा ने फरमाया था, जब उनको कहा गया था ना, उन्होंने ये दुआ इनको सिखाई थी, एक दुआ जो आप जी अल्लाह माजनी फी मुसीबती वक्फी खैरन मिन, तो ये वाली दुआ जो थी कि ये जब किसी ऐसी मुसीबत हो तो मांगनी चाहिए, अबू सलेमा ने सिखाई थी। तो कहती है जब उनकी वफात हुई तो मैंने ये दुआ तो मांगी, लेकिन मैंने कहा अबू सलेमा से अच्छा मुझे शौहर कहाँ से मिल सकता, तो अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिया। तो ये वो कपल है जिन्होंने फर्स्ट हिजरत वहाँ की थी हबशा। तो फिर आप यहाँ पे कैसे आ गए,
आगे से
वापस आ गए, तो फिर जब वो सूरह नजम की आयात उतरी थी और मुशरिकीन ने सजदा किया था, मैंने आपको बताया, वो बात मशहूर हो गई, फिर ये लोग वो मुसलमानों ने सोचा ये तो मुसलमान हो गए, वो वापिस आए वापस आए तो क्या देखा यहाँ पे, ये तो वैसे के वैसे ही हालात है। और फिर ये भी कहा जाता है कि फिर उसके बाद इनके ऊपर, अबू सलीमा के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर होता था, क्योंकि ये कुरैश में से नहीं थे, ये भी कहा जाता है कि कुरैश के अंदर से नहीं थे। उम्मे सलीमा से इनकी शादी हुई तो ये फिर इधर ही इन्होंने ये कबीला अडॉप्ट कर लिया था एक तरह से। पहले ये जमाने में भी होता था, बीवी के कबीले के साथ जाके मिल जाते थे, उन्हीं के साथ रहना शुरू कर देते थे, तो ये यहाँ पे आके रह रहे थे। तो इतना ज्यादा इनके ऊपर जुल्म होता था इसी वजह से कि ये कुरैश नहीं थे। और उसके बाद फिर अब ये जब इजाजत मिल गई, जब पता है कि अब मदीना जा सकते हैं, हिजरत कर सकते हैं, तो ये लोग हिजरत के लिए निकले। उस वक्त क्या हुआ था ये मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहती हूँ। इनकी जो सुभान अल्लाह बात है ना, बहुत ही जबरदस्त है कि उस वक्त लोग, बाद में तो लोग प्राइवेटली बहुत खुफिया तौर पे हिजरत करने लगे, लेकिन इन्होंने खुलम खुला, इनको यानी शुरू के जो थे इनको नहीं पता था कि इस तरह से कुछ मसला होगा। तो मदीना हिजरत करने का जब इन्होंने इरादा किया, एक ऊंट लिया अपने लिए, उसके सामान वगैरह बांध रहे थे। लोगों ने आपसे पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा भाई मैं आजाद आदमी हूँ, मैं जा रहा हूँ यसरब जा रहा हूँ अपनी फैमिली को लेकर। तो उन कुरैश तो फौरन उनके सामने आ गए और उन्होंने कहा, अभी मक्का की हदूद से निकलने नहीं पाए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है तुमने अगर जाना तो चले जाओ, तुम तो हम में से नहीं हो, लेकिन ये औरत नहीं जा सकती क्योंकि ये तो हमारी है, कुरैश में से बनू मखदूम में से थी, और ये बच्चा भी नहीं जा सकता, ये भी हमारा है। और बच्चा कितना था, सलीमा कितने थे, 2 साल के थे, 2 साल का बच्चा है, तो ये भी नहीं, हम इसको भी नहीं ले जाने देंगे, और अगर तुमने जाना है तुम इसी तरह जाओगे क्योंकि हम तुम्हें एक्सपेल करते हैं, यहाँ से जाओ तुम और ये यहीं पे रहेंगे। अब आप सोचें कि वो उनको तो जाना पड़ गया। अब पीछे क्या हुआ कि उन्होंने कहा खुदा की कसम हम तुम्हारे कबीले की इस औरत के पास ये बच्चा नहीं रहने देंगे। ये किसने कहा, फिर उसके बाद इनके जो शोहर के कबीले वाले थे, जब उनको ये पता चला कि इन्होंने तो बच्चा भी रख लिया, तो वो आ गए। अब कबायली हमियत इतनी ज्यादा थी ना, वो आ गए और वो कहने लगे ये बच्चा तो हमारा है क्योंकि अबू सलीमा का बच्चा, अब बच्चा हमारा है, बच्चा तो हम तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे, ठीक है औरत तुम्हारी है तुम औरत को रखो लेकिन बच्चे को नहीं हम रहने देंगे। तो ये भी तारीख किताबों में आता है कि उन्होंने इतनी खेचातानी की बच्चे के साथ कि उसका बाजू ही उतर गया, यानी वो एक तरफ से वो खेच रहे थे एक तरफ से वो, हद तक है जो उम्मे सलीमा ने कहा कि खुदा का वास्ता बच्चे को जाने दो। अब वो बच्चे को ले गए, शोहर मदीना चले गए, खुद ये यहाँ बैठी हैं। कहती हैं कि ऐसा होता था कि रोजाना इनका ये हाल था कि रोजाना ये मक्का से बाहर एक जगह थी, वहां पे जाके बैठ जाती थी और वहां पे सारा दिन रोती रहती। कहती मैं कुछ काम नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी कि मैं क्या करूं कि ना मेरा शोहर मेरे पास ना मेरा बच्चा। अब सोचिए कि इतना छोटा बच्चा एक माँ के लिए कैसी उसकी तड़प है। तो ये यानी मक्का से बाहर बतहा का एक मकाम था, वहां पे बैठी 1.5 साल तक एवरी डे ये होता। उसके बाद इनके चचाजात थे तो उन्होंने देखा, उनको बड़ा तरस आया, उन्होंने कहा कि जब ऐसा ऐसा है तो बनू मखदूम के सरदारों के पास गए, उनको मिन्नत समाजत की थी इस औरत को जाने तो क्या फर्क पड़ता। फिर उनको रहम आ गया, उन्होंने इनको जाने दिया और कहते हैं कि फिर ये अपने शोहर के कबीले के पास गई और उनकी मिन्नत समाजत की। अब थोड़ा सा जोश जरा ठंडा हो गया था, 1.5 साल गुजर चुका था, तो फिर जाके उन्होंने इनको बच्चा दिया। और कहती है कि इससे पहले भी कोई और मसला होता, यानी ये इतनी ज्यादा ये डर चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं फौरन वहां से निकलना मैंने चाहा कि कहीं कोई रुकावट ना पैदा हो जाए, तो मैंने जल्दी जल्दी तैयारी की, बेटा गोद में लिया, ऊंट पर सवार हुई और मदीना के लिए अकेली चल पड़ी। अब आप सोचें उस जमाने में अकेले जाना, ये बुक में नहीं है, आप बुक का पेज ना ढूंढे, मैं आपको खुद से बता रही हूँ। अब ये ट्रेवल करना अकेले बच्चे के साथ, और ये कोई छोटा सफर नहीं था, तकरीबन 2 हफ्ते लग जाते थे, और उस सफर में रात भी होगी दिन भी होगा, वैसी दरिंदे भी होंगे, दुश्मन भी हो सकता है, कोई लूट सकता है, अकेली औरत का क्या, और जवान है अभी। लेकिन उन्होंने कहा मैंने तो अल्लाह के भरोसे के ऊपर मैं निकल पड़ी कि अब ये ना हो फिर मुझे पकड़ लो। अब जब ये मकामे तनईम पे पहुंची है, तनईम मक्का से 3 मील दूर एक जगह, मस्जिद आयशा भी जहाँ पे, तो कहती हैं जब मैं वहां पहुंची हूँ तो उस वक्त फिर मैंने देखा वहां पे उस्मान बिन तलहा को देखा, तो उन्होंने कहा कि ऐ ज़ादे मुसाफिर की बेटी कहाँ जा रही हो। मैंने कहा मदीना अपने फादर के पास जा रही हूँ। उन्होंने कहा क्या इस सफर में तुम्हारे साथ कोई नहीं है? मैंने कहा बाखुदा मेरे साथ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं। उन्होंने कहा खुदा की कसम अब मैं तुम्हें मदीना पहुंचा के वापस आऊंगा, मैं तो तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता वल्लाही। फिर उन्होंने इनके ऊंट की नकेल पकड़ी और आगे आगे चल दी। वो पैदल है और ये सवार है। अभी उस्मान बिन तलहा मुसलमान नहीं है, बिल्कुल यंग है। और उस्मान बिन तलहा कौन है? इनका भी मैंने आपको कुछ बात बताई थी, याद है? कोई चाबी है किसी के पास? चाबी काबा की चाबी जो थी ना वो इनके पास थी। और जब मक्का फतह हुआ था तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? जब हज़रत अब्बास को सिखाया का काम दिया था तो फिर इनको चाबी वापस की थी। चाबी इनके पास, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे थे चाबी को। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये चाबी जो इनसे छीनेगा, इनके खानदान से छीनेगा, वो जालिम होगा। आज तक चाबी इनके खानदान में और क़यामत तक रहेगी। उस्मान बिन तलहा, तो ये वो उस्मान बिन तलहा है। देखिए उस वक्त भी खैर थी, वरना वो केयर, एक औरत जा रही है हमें क्या, और ऊपर से हमारे तो दीन पे भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, और कौन इतनी मुसीबत करे कि दो हफ्ते का सफर करके जाए और वो भी पैदल, किसको क्या मुसीबत पड़ी। लेकिन खैर जब किसी के अंदर होती है ना, अल्लाह ताला कैसे देखिए सुभान अल्लाह उनको रिवॉर्ड करता है। हाँ अल्लाह। तो फिर उन्होंने वो ये ऐसे इंसान थे कि फरमाते हैं कि मैंने इनसे ज्यादा नेक दिल और शरीफ इंसान कोई नहीं देखा, कि सारा रास्ता वो खामोश रहे सिवाय इसके कि जब रात होती थी ऊंट को बिठाना होता था तो उसको बैठने का कहते थे और वो जाके दरख्त के नीचे पड़ जाती थी बच्चे को लेके और ये ऊंट के पास हो जाते थे। फिर जब यसरब करीब आ गया और दूर से मकान उसके नजर आने लगे तो फिर कहने लगे वो जिधर तुम्हारा शोहर है यसरब वो आ गया, तो अब तुम जा सकते। फिर उनका ऊंट आगे कर दिया, खुद वापस चले गए। सुभान अल्लाह। यानी वो काफिर हो के भी कितनी खैर थी। तो जो कुफर में अच्छे होते ना वो इस्लाम ला के भी अच्छे होते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने और ये मामूली थोड़ी नहीं, अल्लाह ताला ने फिर इनकी देखिए निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ तो उम्मातुल मोमिनीन हमारी माओं में से एक है जिनके साथ उन्होंने इतनी बड़ी खैर की थी, तो अल्लाह ताला ने तो इनको नवाजना था ना। और उसके बाद अबू सलेमा के बाद आमिर बिन रबिया और इनकी बीवी लैला बिनते अबी हसम और अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने हिजरत की। अच्छा अब आमिर बिन रबिया और लैला के बारे में कुछ जानते हैं? कोई बात हुई थी इनके बारे में पहले? चले लैला के बारे में। एक औरत थी, वो अपना सामान ऊंट के ऊपर रख रही थी कि हजरत उमर पास से गुजरे, हिजरत हबशा होने वाली थी, तो उन्होंने पूछा जब सवाल जवाब हुए और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ। फिर जब उनके शोहर आए वापस तो उन्होंने क्या कहा था कि मुझे याद लगा कि उमर के एटीट्यूड में कुछ फर्क था। उन्होंने कहा खताब का गधा भी जो ईमान ले आएगा लेकिन उमर नहीं ईमान लेकर आएगा। ये वो ही कपल है, इन्होंने पहली हिजरत हबशा की, उसके बाद फिर वापस आए जब वो पता चला कि ये लोग शायद मुसलमान हो गए। उसके बाद सेकंड जब हबशा को हिजरत थी उसमें भी ये शामिल थे। सुभान अल्लाह इनके मकाम कैसे ना, तो अल्लाह ताला ने हिजरत करने वालों का कितना बड़ा मकाम रखा है। दूसरी हिजरत हबशा में भी थे, फिर उसके बाद वहां पर इतनी यानी बुरे हालात के अंदर रहे, फिर उसके बाद फिर वापस आ गए ये मदीना हिजरत करने से कुछ अर्सा पहले, ये दोनों वापस आ गए और उसके बाद इनको ये सआदत मिली कि मदीना भी इन्होंने हिजरत की। और याद रखिए मदीना हिजरत करना कोई आसान काम नहीं था, अपना घर अपना काम कारोबार अपने फ्रेंड्स अपने कबीला एवरीथिंग आपने छोड़ दी और वहां बिल्कुल नई जगह है, वहां पर कुछ सेटअप नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड तो है नहीं कि जब वहां पर भी जाके अपने अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे, कोई घर नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, अजनबी लोग हैं, कोई अपना कबीला नहीं है, कोई दोस्त अहबाब नहीं है। ठीक है वहां पे मुसलमान होंगे लेकिन वो भी अजनबी है ना, कभी ना जान ना पहचान ना कुछ। कितनी बड़ी इनकी कुर्बानी है अल्लाह के रास्ते में। और कई मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने मक्का में रहते भी अपने इस्लाम को छुपाया हुआ था, वो चुप चुप करके चुपके चुपके अपना अंदरूने खाना अपनी इबादत नमाज कर ली लेकिन किसी को नहीं पता था ये मुसलमान हो गए। अगर वो चाहते तो वो मक्का में ही रहते, छुप छुपा के अपना करते रहते, थोड़ी उनका कोई मसला हो रहा था। लेकिन वो चाहते थे कि दीन को मुकम्मल तौर पे प्रैक्टिस करें, इसलिए उन्होंने भी कहा हम हिजरत कर लेते। कितनी बड़ी कुर्बानी। हम आज देखें कि हम अपने दीन के लिए किस कुर्बानी करने को किस हद तक तैयार होते। उन्होंने तो इतनी बड़ी कुर्बानी दे डाली, हम किस हद तक, हम तो इतनी सी भी जहाँ पे जरा सी भी कोई मुश्किल आ रही हो उसको भी हम इतना पहाड़ बना लेते हैं कि हाय फिर क्या होगा, हम ये कैसे करेंगे, मेरा ये मसला, मेरा वो मसला। इनके देखे वाकई ये कुर्बानी है, हमारी हमारी चीजों को कुर्बानी नहीं कह सकते, ये जो छोटे छोटे हमारे मसले आते हैं ये कुर्बानी कोई नहीं है, ये बस इनकन्वीनियंसेस हैं। तो इन्होंने हिजरत की, फिर बैते उकबा मुकम्मल हुई तो मुसलमानों ने पे दर पे हिजरत की। अच्छा मैंने आपको बताया था अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम का, वो भी आता है रिवायात में बाद तारीख की किताबों में, और ये भी आता है कि इन्होंने बाद में हिजरत की। फिर बैते अकबा मुकम्मल हुई तो मुसलमानों ने एक दूसरे के पीछे आगे पीछे हिजरत करनी शुरू कर दी। ग्रुप्स में भी हिजरत करते थे, दो दो चार चार, लेकिन खुफिया तौर पे बिल्कुल रात के वक्त निकल गए। ये लोग कुरैश के डर से चुपके चुपके निकलते थे, यहाँ तक के उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत की। वो कुरैश को चैलेंज देते हुए बाबंगे दहल निकले, लेकिन किसी को इनके सामने आने की जरूरत न हुई। वो 20 सहाबा के साथ मदीना तशरीफ लाए। जब हजरत उमर ने हिजरत करनी थी तो हजरत अली फरमाते हैं कि किसी और ने ऐसी ऐलानिया हिजरत नहीं की जैसी हजरत उमर ने की, कि जब उन्होंने हिजरत करनी थी तो वो हथियार बांध के हरम में आए, तवाफ किया, नफल पड़े और उसके बाद लोगों को ऐलान किया जो चाहता है कि उसकी माँ उसको गुम कर दे यानी गवा दे, और जो चाहता है कि उसके बच्चे यतीम हो जाए, और जो चाहता है कि उसकी बीवी बेवा हो जाए, तो मेरे साथ वहाँ बाहर वादी पे आके मिले, मैं वहाँ पे इंतजार करूंगा, हाँ, और मैं हिजरत कर रहा हूँ। ये देखिए जरूरत, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की थी कि अल्लाह ताला दो उम्रों में से एक उम्र को इस्लाम नसीब कर दे। ये है वो जुर्रत और बहादुरी। और हम मैं किस भीगी बिल्लियां बन के आए दिन को ईमेल आ जाती है, हाय ऐसा हो गया, टेढ़ी आंख से किसी ने देख लिया, अब मैं ऐसे कर लूं, वो उसने ऐसे कह दिया तो मैं अब ये कर लूं, मतलब हर बात हम रुख्सतें मांगते हैं कि किसी का कुछ करना ना पड़े। ये सुभान अल्लाह, इन लोगों को देखे दुश्मन की आंख में आंख डाल के देख रहे हैं, उनको ना मौत का डर न किसी और नुकसान का खौफ, उनका भरोसा अल्लाह पे है कि नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में, मेरी जान, मेरी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। तो इसलिए उनको कोई और किसी की सुखान अल्लाह जरूरत नहीं हुई कि वो आ सके और इनके साथ भर दू। तो किसी को क्या, हर एक को जान प्यारी है ना। हर एक बड़ा जबरदस्त वाक्य इनके बारे में ये भी आता है कि जब ये हिजरत करने लगे थे तो यहाँ पे तो 20 सहाबा का आता है, बाज जगह पे ये भी आता है कि इन्होंने इनके दोस्त थे आयाश बिन रबिया और हशाम बिन अमर, सॉरी हशाम बिन अलआस, अमर बिन अलआस के भाई थे वो, और अयाश बिन रबिया, ये इनके दोस्त थे, साथी थे, इनको अपने साथ तैयार किया कि हम सारे मिलके हिजरत करते हैं। तो ऐसा है कि फलानी जगह पे मक्का से बाहर फना वैली में हम मुलाकात करेंगे सुबह सवेरे, जो वहां पे पहुंच गया होगा तो वो साथ चल पड़ेगा, जो नहीं पहुंचा होगा वो पीछे रह जाए, फिर बाकी चले जाए। उन्होंने कहा ठीक है, ये फैसला हुआ। उसके बाद जब सुबह हुई तो ये वहां पे पहुंचे हजरत उमर, और वहीं पे अयाश बिन रबिया भी आ गए, लेकिन हशाम नहीं आए। अब वो दोनों, उन्होंने ट्रेवल किया, वो चले गए, हशाम का कोई पता नहीं था। जब ये मदीना पहुंचे तो अयाश बिन रबिया कौन है, ये कौन है, ये अबू जहल के सौतेले भाई हैं। अबू जहल की माँ जो थी और अयाश बिन रबिया की माँ थी इन्हें, और एक और भी इनका सौतेला भाई था। तो अबू जहल और इनका वो सुतेला भाई, ये दोनों आ गए वहां पे मदीना, और आके कहने लगे कि तुम्हें पता है याश के तुमने क्या किया, तुम्हारी माँ का तो पीछे से रो रो के बुरा हाल हो गया, ना वो कुछ खा रही है ना पी रही है, कह रही है उसने ये मन्नत मान ली है कि मैं छांव में भी नहीं बैठूंगी, मैं धूप में बैठूंगी जब तक मैं अपने बेटे को ना देख लूं, और सार उसका जुओं से भर गया, तो तुम वापिस चलो अपनी माँ के पास, वो तो मर जाएगी इस तरह। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उनका दिल नरम हो गया कि मेरी माँ के साथ ऐसे गुजर रही है। तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं, इनकी बातों में मत आ। उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब अरे उनके भाई थे तो उन्होंने, हजरत उमर ने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सोचता हूँ कि चलो अपनी माँ को भी देखाऊंगा, और वहां पे मेरा कोई माल वगैरह पड़ा हुआ है तो वो भी ले आऊंगा। हजरत उमर ने कहा अगर तुम्हें माल का है ना, मैं तुम्हें माल दे देता हूँ जितना तुम्हारे पास वहां पे पड़ा, लेकिन तुम मत जाओ, इनकी बातों में मत आओ। लेकिन वो उधर से लगे रहा, आपको पता ना अबू जहल बड़ा कन्विंसिंग था, उसने कैसे अबू तालिब को भी कन्विंस कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, तुमने इस दिन से हटना नहीं। उसने ऐसा कन्विंस किया, माँ का ऐसा वो दिलाया, जाहिर है खून के रिश्ते होते हैं तो इंसान को वो भी होता है, कि आखिर उनको तैयार कर लिया जाने के। हजरत उमर ने कहा अच्छा अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया तो ऐसा करो कि मेरा ऊंट ले जाओ, वो इनके ऊंट से ज्यादा तेज है और ताकतवर है, अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हुआ रास्ते में फौरन वापस आ। अब देखें कितनी एक बड़ी कुर्बानी थी ना, कि माल भी देने को तैयार है, ऊंट भी मेरा ले जाए आप, और आप ऐसा करें कि जहाँ पे खतरा महसूस हुआ आप वापस फौरन मदीना आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है, वो चले गए इनके साथ। जब रास्ते में थे तो अबू जहल ने कहा कि मेरा ऊंट तो वैसे ही इतना थक गया है, कमजोर सा है, तो क्यों ना ऐसा करूं मैं तुम्हारे ऊंट पे आ जाता हूँ, तो अपने ऊंट को थोड़ा रेस्ट दे दूं ना। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि बड़े हंसते खेलते बातें करते जा रहे थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम उनको नहीं ऐसा नजर आया। लेकिन जो ही उन्होंने अपना ऊंट बिठाया, वो दोनों भाई जो सौतेले भाई थे वो इनके ऊपर हमला आवर हो गए और इनको जकड़ दिया रस्सियों से और बांध दिया और लेकर मक्का पहुंच गए। मक्का पहुंच के उन्होंने उनको यानी बिल्कुल बंधे हुए कैदी की तरह गिरफ्तार लेकर आए और पूरे मक्का का चक्कर लगा के बोलते जाते थे ये ऐसा सलूक करते हैं हम अपने बेवकूफों के साथ, और इनको कैद में डाल दिया। जिस जगह कैद में डाला, जो जगह कैद के लिए तैयार की गई थी, वहां पे पता चला कि वो हशाम तो यहाँ पे पड़े हैं, उनको भी कैद में डाला। तो इन दोनों को कैद में डाल दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हैं मक्का में ही है ना मौजूद, अभी तो हिजरत नहीं हुई, अभी तो ये मुसलमान जा रहे हैं हिजरत कर करके। आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल समझ लें ऑलमोस्ट लास्ट वन में से थे जो मक्का से गए, क्योंकि बहुत ही कम लोग रह गए थे, सभी जा चुके थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इनका रंज था और इतनी इनकी फिक्र थी ना कि हिजरत के वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूते नाजला करते थे और कहते थे अल्लाह ताला ये मुस्तज़ईफीन है, कमजोरों के ऊपर तू रहम फरमा और इनकी मदद फरमा। तो बाद में फिर हजरत खालिद बिन वलीद के जो भाई हैं वलीद बिन वलीद जो के मुसलमान हो चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज पूछते थे कि कोई है जो उनको बचा के लाए, कोई है जो उनको छुड़ा के लाए, तो कोई भी नहीं था जो जा सकता था, क्योंकि एक तो ये कि वो अबू जहल के और उनके समझ लें डेन में एक में हाथ डालना हो गया, शेर के उसमें वार में यानी उसमें जाना हो गया, उनको छुड़ाना कोई आसान काम तो नहीं था। लेकिन जब वलीद बिन वलीद इससे राजी हुए और वो गए और वो उन्होंने पहले पता चलाया कि कहाँ पे कैद है, वहां से उनको छुड़ाया और उनको भगा के ले गए मदीना। फिर तो ये इनकी स्टोरी थी बीच में। तो सुभान अल्लाह, ऐसे लोगों के साथ हुआ। और सारे मुसलमानों ने मदीना हिजरत की, आम मुहाजरीन मुहाजरीन हबशा भी मदीना आ गए, यानी जो हबशा में थे ना अभी तक वो भी, उनकी भी अक्सरियत मदीना आ गई। मक्का में सिर्फ अबू बकर, अली, सुहेब और जैद बिन हारिसा बाकी रह गए, या फिर वो कमजोर मुसलमान जो हिजरत की ताकत नहीं रखते थे। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी हिजरत का कसद किया, उन्होंने भी इरादा कर लिया था, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरा रुके रहो, तवक्को है यानी उम्मीद है कि मुझे भी इजाजत दे दी जाएगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मेरे माँ बाप आप पे फिदा, आपको इसकी तवक्को है? आपने फरमाया हाँ। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक रुक गए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर करें। इनके पास दो ऊँटनियाँ थी, उन्हें सफर हिजरत के लिए बबूल के पत्ते खिला खिला के खूब तैयार किया। सुभान अल्लाह, के अब ये हिजरत के लिए काम आएंगी ना, तो वो पहले से इन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अब इंशाल्लाह तआला यहाँ तक यानी के मुसलमानों की हिजरत तक, इस तक आपका फिर इंशाल्लाह तआला टेस्ट होगा 1 जून को इंशाल्लाह तआला। अल्लाह तआला आफियत रखे, खैरियत रहे। तो नेक्स्ट हमारी नई क्लास होगी, फिर उसके बाद वाली क्लास जो होगी उसमें सेकेंड जून को जो मैंने आपको बता दिया है, जितना अब मुझे उम्मीद है कि इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। हाँ जी, हजरत उमर ने पहले ही हिजरत कर ली थी, बिल्कुल। चलिए ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير